उदय ने नंदिनी की तरफ देखकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम आपकी मौसी के घर कैसे रुक सकते हैं? आप खुद सोचिए, जब हम इप्सिता के ससुराल नहीं रुके तो फिर आपकी मौसी के घर रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी नंदिनी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आपको क्या लगता है, हम यहाँ पर इशी के साथ आए थे तो क्या हमने अपने बारे में नहीं सोचा होगा? और क्या हम आपको इतने इर्रिस्पॉन्सिबल लगते हैं कि हम आपको यूं ही इधर से उधर घुमाते रहेंगे? नंदिनी उदय की बात सुनकर ना में अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस इतना बोलते बोलते वो चुप हो गई। तभी उदय ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर धीरे से कहा, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना हम दोनों की फिक्र करने के लिए। नंदिनी उदय की बात सुनकर मुस्कुराई और वो अपनी सीट के बिल्कुल साइड में आकर उसने उदय के कंधे पर अपना सिर रख लिया। उदय आराम से कार ड्राइव कर रहा था और उसने एक बड़े से 5-स्टार होटल के सामने अपनी कार रोकी। जैसे ही कार रुकी, नंदिनी ने होटल की तरफ देखते हुए कहा, क्या हम यहाँ रुकेंगे? उदय तुरंत अपने सिर हिलाते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, चलिए चलते हैं। इतना बोलकर उदय ने कार का दरवाजा खोला और वो जैसे ही बाहर उतरा, होटल के वर्कर्स जल्दी से उदय के पास आकर बोले, वेलकम उदय सर। उदय ने उनकी तरफ देखकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमारी कार में हमारा सामान है। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और वो उदय का सामान निकालने लगे। उदय ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधे होटल के अंदर आया। जैसे ही उदय होटल के अंदर आया, होटल का मैनेजर भागते हुए उदय के पास आकर खड़ा हुआ और उसने उदय से हाथ मिलाते हुए उदय को एक फ्लावर बुके दिया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो उदय सर, इतने दिनों बाद आप यहाँ आए हैं। जैसे ही मैंने आपकी बुकिंग देखी, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, पिछले 6 महीने से तो आपकी कोई खबर ही नहीं थी। उदय ने मैनेजर की बात सुनते हुए कहा, हाँ एक्चुअली वो हम आउट ऑफ सिटी थे, लेकिन अब हम यहाँ आ गए हैं तो आराम से 10-15 दिन यहाँ रुकने वाले हैं। उदय की बात सुनकर मैनेजर ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सर, आपका ही तो होटल है। इतना बोलकर उसने नंदिनी की तरफ देखा और जैसे ही उसने नंदिनी की तरफ देखा, उदय ने नंदिनी का हाथ कसकर पकड़ लिया और नंदिनी को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, मीट माय वाइफ नंदिनी। मैनेजर ने जैसे ही उदय के मुंह से ये बात सुनी, वो नंदिनी की तरफ देखकर बोला, वेलकम मैम। नंदिनी ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। तभी मैनेजर ने कहा, आइए आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ। उदय और नंदिनी सीधे मैनेजर के पीछे पीछे गए और मैनेजर ने उन्हें एक किंग साइज का बहुत ही लग्जरियस रूम दिया। उदय ने अंदर जाकर नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, थोड़ी देर में हमारा सामान आ जाएगा। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उदय वहीं सोफे पर ही बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ इप्सिता और अभिमन्यु अपने रूम में थे, वहीं अर्पिता और समर्थ वहीं पर चुपचाप खड़े थे। मासा को जाते देखकर इप्सिता ने कहा, अभिमन्यु हमें ऐसा लगता है कि आपको मासा से इतनी सारी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए थी, और वैसे भी वो अगर हमें मॉडलिंग के लिए मना कर रही हैं तो कुछ सोचकर ही मना कर रही होंगी। वैसे भी अगर उन्हें मॉडलिंग नहीं पसंद है तो हम उसे छोड़ सकते हैं। इप्सिता बोल ही रही थी कि तभी समर्थ ने कहा, नहीं भाभी सा, मुझे लगता है कि अभी ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही था। वैसे भी मासा सिर्फ और सिर्फ राजमहल के बारे में सोच रही हैं और हमें नहीं लगता कि आपको इस वजह से अपना करियर दांव पर लगाने की जरूरत है। आजकल लड़कियों का इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है, वरना उन्हें लोग चीने नहीं देते। इतना बोलकर समर्थ अर्पिता की तरफ देखने लगा। अर्पिता उसकी बात समझ रही थी कि समर्थ ऐसा क्यों बोल रहा है। उसने समर्थ की बात को चुपचाप सुना और कुछ नहीं कहा। अभिमन्यु समर्थ की बात से अग्री करते हुए बोला, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आपका सपना है और हम आपके सपने को इस तरह से टूटने नहीं दे सकते, इसलिए अब आप इन सारी चीजों के बारे में मत सोचिए, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। रही बात मासा की तो हम उन्हें मना लेंगे। अर्पिता ने जैसे ही ये बात सुनी, वो अभिमन्यु और इप्सिता की तरफ देखने लगी और तभी उसने कहा, भाई सा भाभी सा, आप दोनों थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, हम आपका खाना यहीं भिजवा देंगे। इतना बोलकर अर्पिता कमरे से निकलने लगी। तभी अभिमन्यु ने अर्पिता को रोकते हुए कहा, अर्पिता हमें आपसे कुछ बात करनी है। अर्पिता ने पीछे मुड़कर अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, भाई सा अभी आप दोनों सफर से लौटे हैं और वापस आते ही इतना सब कुछ हुआ, आप लोग काफी ज्यादा थके होंगे, आज आराम कर लीजिए, आपको जो भी बात करनी है हम कल करेंगे। इतना बोलकर अर्पिता चुपचाप अभिमन्यु और इप्सिता के कमरे से बाहर चली गई। समर्थ ने इप्सिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ओके भाभी सा, टेक रेस्ट, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। इतना बोलकर समर्थ भी रूम से बाहर निकलने लगा। उसने अभिमन्यु के कान के पास आकर धीमी आवाज में कहा, आज रेस्ट कर लो, बाकी जो भी करना हो तुम्हें राज्याभिषेक और अभी रिसेप्शन की बात करना है। अभिमन्यु ने जैसे ही समर्थ की बात सुनी तो वो उसे गुस्से से देखने लगा। समर्थ मुस्कुराते हुए उसके रूम से जल्दी से बाहर निकल गया। इप्सिता ने भी समर्थ की बात सुन ली थी और वो शर्माने लगी। उसने अपनी साड़ी की तरफ देखते हुए कहा, साड़ी हमें इतनी ज्यादा हैवी क्यों लग रही है और अभी तो शायद हमारे कपड़े भी नहीं आए हैं। अभिमन्यु ने इप्सिता की ये बात सुनकर अपने कपबोर्ड के पास जाकर उसमें से अपनी एक शर्ट निकाल कर देते हुए कहा, आप इसे चेंज कर लीजिए, तब तक हम आपका सूटकेस मंगवाते हैं। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा, उसके हाथ में एक व्हाइट कलर की शर्ट थी। इप्सिता ने उस शर्ट को देखकर कहा, आई यू श्योर हमें यहाँ पर इसे पहनना चाहिए? अभिमन्यु ने कहा, हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही तो पहनने को बोल रहे हैं। चेंज करिए, हम आपके कपड़े मंगवाते हैं। इप्सिता ने अभिमन्यु के हाथ से वो शर्ट ली और वो वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी अभिमन्यु ने शर्ट को कसकर पकड़ लिया। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, छोड़िए। इप्सिता इतना बोलकर अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो इप्सिता के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। इप्सिता ने अभिमन्यु के हाथ से वो शर्ट लेते हुए कहा, हमें ऐसे देखना बंद करिए और जाइए हमारे कपड़े मंगवाइए। इतना बोलकर इप्सिता ने अभिमन्यु के हाथ से वो शर्ट खींची और सीधे वॉशरूम के लिए चली गई। उसे जाते देखकर अभिमन्यु मुस्कुराया और अपने रूम से बाहर निकल गया। वहीं अर्पिता ने नौकरों को ऑर्डर दे दिया था कि अभिमन्यु और इप्सिता का खाना उनके रूम में पहुंचा दें। अर्पिता खुद मासा के रूम में जाने लगी। तभी समर्थ ने उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, अर्पिता हमारी बात सुनिए। अर्पिता समर्थ की आवाज सुनकर रुक गई और उसने समर्थ की तरफ देखकर पूछा, क्या बात है, अब क्या बात करनी है आपको हमसे? समर्थ ने अर्पिता की तरफ देखते हुए कहने लगा, हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि आपने उस डाइवोर्स पेपर पर साइन किया या नहीं। अर्पिता ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं अभी नहीं, पहले हम मासा से इस बारे में बात करना चाहते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है। समर्थ ने अर्पिता को समझाते हुए कहा, अभी भी आप मासा के लिए रुकी हुई हैं, अब सोचने का समय नहीं है अर्पिता, प्लीज आप हमारी बात को समझने की कोशिश करिए। अर्पिता ने समर्थ की बात सुनी और उसने कहा, हाँ हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि हम इतनी जल्दी सारी चीजों को एक्सेप्ट कर पाएं, और प्लीज समर्थ आप भी हमें इस तरह से प्रेशर देना बंद करिए।
समर्थ अर्पिता की तरफ देख रहा था, वो काफी ज्यादा टेंशन में लग रही थी और उसके चेहरे की मायूसी समर्थ से देखी नहीं जा रही थी। वो उसके करीब गया और उसने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, कैसी बात कर रही हैं आप अर्पिता, हम आपको प्रेशर नहीं दे रहे हैं, हम बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब आपको अपनी जिम्मेदारी पर अपनी जिंदगी के फैसले लेने होंगे। अब आप कोई छोटी बच्ची नहीं है और ना ही आप जयराज जैसे इंसान के साथ रहना डिजर्व करती हैं, इसलिए प्लीज मैच्योर बनिए और अपने फैसले खुद लीजिए। हम नहीं चाहते कि आप मासा की बातों में आकर फिर से अपनी ही प्रॉब्लम्स को बढ़ाएं। कब तक आप इस तरह से मासा और अभिमन्यु के फैसलों पर अपनी जिंदगी जिएंगी, बताइए। अर्पिता समर्थ की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गई और उसने कुछ भी नहीं कहा। तो समर्थ ने धीमी आवाज में कहा, अर्पिता हम आपके भले के लिए आपसे ये सारी बातें कह रहे हैं, आगे फैसला आपका ही है, आप जो फैसला लेंगी हम आपके उस फैसले में आपके साथ रहेंगे। आप अभिमन्यु को भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका भला चाहता है, और आप खुद सोचिए जब वो इप्सिता भाभी के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहा है तो आपको क्या लगता है कि वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा? आप बस एक बार अपना डिसीजन लीजिए और उसके बाद का सब कुछ हम दोनों पर छोड़ दीजिए। अर्पिता समर्थ की बात सुनकर चुपचाप वहीं पर खड़ी रही। समर्थ ने जब अर्पिता को इतना सोचते हुए देखा तो वो उसे वहीं छोड़कर चुपचाप वहां से चला गया। अर्पिता जो मासा के कमरे में जा रही थी वो मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। उसने अपने रूम में जाकर उन डाइवोर्स पेपर को देखा और उन्हें देखकर अर्पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। समर्थ की कही एक एक बात अर्पिता को समझ में आ रही थी, क्योंकि समर्थ ने जो कुछ भी उसे समझाया वो सब कुछ बिल्कुल सही था। अर्पिता उन डाइवोर्स पेपर को देखकर अपने आंसुओं को पोंछने लगी।